जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन जा जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन जा जय कुंज बिहारी परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेम नंदी और ग्लोरी सिमिल डिवोटीज और ग्लोरी सिमिल डिवोटीज और ग्लोरी सिमिल डिवोटीज और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा।
वो किताब निकालो
और हिंदी वाली किताब इधर है, हिंदी वाली दे दीजिए।
इसमें धागा नहीं,
धागा दोनों इसमें
जिसमें धागा है नहीं,
उसमें नहीं है,
इसको बंद कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोक संख्या 5। मेरे पीछे बोले अर्जुन वाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम मह वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे पहृतम तेजो देव विस्मापनम मह। अर्जुन वाच वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम मह। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोले अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा वंचित त्यक्त अहम मैं महाराज हिरजन हरिणा भगवान द्वारा बंधु रूपिणा घनिष्ठ मित्र रूपी येन जिससे मैं मेरा अपहृतम छीना गया है। तेज पराक्रम देव देवता विस्मापनम आश्चर्यजनक महत् अत्यधिक प्रबल। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले शब्दों को समझेंगे। बहुत सरल हैं शब्द, अर्जुन के शब्द बहुत सरल हैं। अर्जुन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं। अर्जुन आए द्वारका से, कहाँ पर आए? हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि बहुत समय से कृष्ण का समाचार नहीं प्राप्त हुआ है, तो समाचार लेके आऊं। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं था, है ना, और डाक में भाग भी नहीं था, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने का भी कोई तरीका नहीं था, तो जाना ही पड़ता। तो अर्जुन गए, और जब तक अर्जुन नहीं लौट के आए, कोई उपाय नहीं था समाचार प्राप्त करने का। तो अर्जुन आए तो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कई प्रश्न पूछे कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों मलिन है। और अब अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन का जो है ये सबसे पहला श्लोक है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? तो अर्जुन कह रहे हैं, वंचितो हम, वंचितो, वंचित का मतलब हो गया मैं दूर हो गया हूँ, वंचित का मतलब मैं दूर हो गया हूँ। वंचितो हम महाराज, महाराज युधिष्ठिर, हरिणा हरि के द्वारा मैं दूर हो गया हूँ। हरिणा बंधु रूपिणा, जो मेरे मित्र के रूप में थे, तो उन्होंने मुझे अपने से दूर कर दिया है, वंचित हो गया हूँ मैं। ये न माने जिनके द्वारा, मैं मेरा अपहृतम तेजो, मेरा तेज अपहरण कर लिया गया है, उन्होंने मेरा तेज अपहरण कर लिया है। देव विस्मापनम महात, जो देवताओं को विस्मित करने वाला महान तेज था। अर्जुन का कैसा तेज था? महान तेज, देवताओं को भी विस्मित करने वाला, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। अर्जुन में अब कोई शक्ति नहीं रही, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता 10:41 में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति बल सौंदर्य ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। 10:41 गीता का 10वें अध्याय का 41वें श्लोक। यद यद विभूतिमसत्वम श्रीमदोर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसे संभवम। कि किसी के अंदर कुछ भी अगर है, शक्ति है, पराक्रम है, तेज है, प्रभाव है, बल है, सौंदर्य है, कुछ भी हो, तो वो क्या है? भगवान कहते हैं कि यद्यद् विभूतिम सत्त्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव तत्तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजोंसे संभवम, उसको मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। क्यों? भौतिक जगत में उत्पन्न होता है, हर चीज उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान में कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है। भगवान में हर चीज जो है आज अनादिकाल से है, और मूल रूप में है, लेकिन भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न होता है। जैसे अर्जुन का शरीर भी उत्पन्न हुआ, और अर्जुन में वो तेज भी, बल भी है, वो सब उत्पन्न हुआ, तो भगवान से उत्पन्न हुआ। लेकिन भगवान नहीं उत्पन्न होते, ना भगवान का तेज, भगवान के गुण कोई ऐसे नहीं जो उत्पन्न होते हों। तो यहाँ पर भगवान गीता में हमें एक दृष्टि दे रहे हैं कि किस दृष्टि से हमें इस भौतिक जगत को देखना है। हम लोग कैसे देखते हैं भौतिक जगत को? कि किसी व्यक्ति के अंदर बहुत विशेष बल है, बहुत पराक्रम है, तो हम सोचते हैं कि ये इतना बलवान है, इतना पराक्रम है, इतना प्रभावशाली, इतना धनी है ना, तो ये तो मतलब भगवान से स्वतंत्र है, ये तो ऐसा, या इसी को भगवान मानते हैं, भाई यही भगवान है, अरे ये तो भगवान है भाई, ये तो भगवान है, लेकिन भगवान नहीं है वो। कि कोई व्यक्ति अपने को भगवान के बराबर समझ लेता, मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, कि मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना सौंदर्य है, इतना यश है, तो मुझे भगवान की क्या जरूरत है। तो ये एक अज्ञान है इस भौतिक जगत में स्वाभाविक है। तो यहां पर ये समझना है, अर्जुन ने जो बात कही कि उन्होंने मेरा तेज अपहरण कर लिया, तो अर्जुन का क्या कहना, अर्जुन के कहने का अर्थ क्या है कि उनका ही दिया हुआ जो था उन्होंने ले लिया, उनका ही था, मेरा अपना कुछ भी नहीं था, अर्जुन का ये भाव है। तो अर्जुन ने मतलब इस भावना से कहा, उसी में ही प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार से समझो, आपके अंदर कोई भी गुण विशेष अगर आ गया है, कोई प्रचार करने की भी क्षमता आ गई है, ना पुस्तक वितरण करने की क्षमता आ गई है, धन दान लेने की क्षमता आ गई है ना, तो मत समझो कि अब आपको जो है भगवान की जरूरत नहीं है और अब आप जो है स्वतंत्र हो गए। भगवान से ही आई है और भगवान जब लेंगे तो चली जाएगी, आप नहीं पकड़ सकते, आपके हाथ में वो पकड़ने की शक्ति नहीं है, कोई भी गुण आप अपने हाथ में पकड़ नहीं सकते कि नहीं ये मेरे अंदर आ गया, आप तो नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति जो है वेट लिफ्टिंग में चैंपियन बन गया तो सर अब तो मैं चैंपियन बन गया, अब तो जो है ना अब मेरे पास जो शक्ति है वो तो आ गई, क्यों चैंपियन बन गया और मुझे मेडल मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया है, तब तो ये शक्ति मेरे पास बनी रहेगी। कुछ नहीं रहेगा आपके साथ, कोई शक्ति नहीं रहेगी, भगवान जब चाहें तो ले लेंगे और आप हाथ हिलाने की भी आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी। कहाँ वेट लिफ्टिंग में आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए और कहाँ आप हाथ भी नहीं उठा पाएंगे, अपना हाथ भी नहीं हिला पाएंगे, ये हाल हो जाएगा, है ना। तो अर्जुन ने जो कहा उसी को ही प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कोई भी शक्ति, कोई भी बल, कोई भी महत्व अगर आपके अंदर आए, किसी के अंदर आए, तो मत सोचना कि इसको भगवान की जरूरत नहीं है, भाई हमें भगवान की जरूरत है क्योंकि हमारे पास जो है कोई सुख नहीं है, कोई कई तरह के संकट आ रहे हैं, कई तरह के दुख आ रहे हैं, तो हमें तो भगवान की जरूरत है, और इसके ये तो बहुत सुखी है, ये तो राजा है, लखपति है, करोड़पति है, तो इसको भगवान का भजन करने की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद तो सीधे राजकल बोलते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो, राजकल अगर कृष्ण का भजन नहीं करता तो क्या है, राजकल है ना। तो ये प्रभुपाद की दृष्टि है, अर्जुन की दृष्टि है, भगवान गीता में इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि उसे मेरी पूर्ण शक्ति का तुच्छ अंश स्वरूप समझो। कृष्ण के पास पूर्णता है, हर चीज में पूर्णता है, लेकिन उनकी पूर्ण शक्ति का जो है कुछ तुच्छ अंश है जो उसके अंदर आ गया है, और वो कब चला जाएगा वो नहीं जानता, वो नहीं उसको पकड़ सकता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। तो जब तक भगवान की स्वतंत्रता है, भगवान ने अपनी स्वतंत्रता से दी है, लेकिन आप की स्वतंत्रता नहीं है, लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप जो चाहें तो भगवान से ले लें। भगवान का पूरा अधिकार है, पूरा नियंत्रण है, ये भी नहीं हो सकता कि जब आप चाहें तो भगवान से ले लें, ऐसा नहीं है। भगवान जिसको देना चाहे, जब देना चाहे तो देंगे, जब भगवान जिसको जो शक्ति देना चाहते हैं, जिस समय देना चाहते हैं और जितनी देना चाहते हैं उसको उस समय ही मिलेगी, उतनी ही शक्ति मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और जब भगवान लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, कुछ आपके अधिकार नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का संकेत अर्जुन के प्रति, अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो केवल भगवान ही शक्ति नहीं दिखाते हैं, बल्कि अर्जुन को भी शक्ति देते हैं अपना संदेश फैलाने के लिए, जो आवश्यक शक्ति है अर्जुन को भी देते हैं। तो अर्जुन को भी जो है भगवान ने शक्ति दी थी पृथ्वी का भार उतारने के लिए। आगे भगवद गीता 4:5 में भी कहा गया है, चौथा अध्याय श्लोक संख्या 5 कोई बता सकता है चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 5 श्री भगवान वाच बहुनिमें व्यतीतानि जन्मानि तव जानि। भगवद्गीता 4:5 में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके दिव्य क्षमा करिए भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वहीं पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं सब जानता हूँ, मेरे बहुत जन्म हुए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए, उन सबको मैं जानता हूँ, अपने भी जन्मों को जानता हूँ, तुम्हारे भी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते, तुम केवल अपने इसी जन्म को जानते हो, पिछले सब जन्म तुम नहीं जानते हो ना मेरे जन्मों को जानते हो, मैं अपने सब जन्मों को जानता हूँ, पहले जितने हुए हैं और तुम्हारे ही जन्मों को जानता हूँ। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं, तो ले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का संकेत क्या है कि अर्जुन भी अब जो है जाने वाले हैं, भगवान चले गए, अर्जुन के पास जो शक्ति थी भगवान ने अर्जुन से वो शक्ति भी ले ली, क्यों अब जरूरत नहीं है, जो काम मेरा होना था हो गया, अब तुम भी आओ वापस मेरे धाम में। तो अर्जुन को भी जो है भगवान ने अब मतलब खाली कर दिया, अब अर्जुन के पास कोई शक्ति नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वो भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब ये उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गईं, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि अर्जुन को जो शक्ति दी थी भगवान ने वो अर्जुन के लिए नहीं थी, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए थी। भगवान की लीला समाप्त हो गई, अब अर्जुन को कोई जरूरत नहीं है शक्ति की, तो अर्जुन की शक्ति चले गए। आगे वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी, अर्जुन को जो शक्ति भगवान ने दी थी देवताओं को विस्मित करने की वो भगवान के धाम जाने के लिए नहीं थी, बल्कि इस भौतिक जगत में भगवान की महिमा की स्थापना करने के लिए थी, है ना। और अब तो अर्जुन का समय आ गया है भगवान के धाम जाने का, तो वो शक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने शक्ति ले ली, है ना। आगे यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। तो इस भौतिक जगत में थोड़े समय के लिए किसी के पास आ जाता है अगर शक्ति, तो वो जो है एकदम घमंड में आ जाता है, एकदम से घमंड में आता है, अभी तुरंत आए तुरंत उसको घमंड हो गया उसको पता नहीं है कि तुरंत ही चला जाएगा। अभी पंकज जी बता रहे थे कि एक घटना कि एक लड़का था जो कि डेंटिस्ट बना, डेंटिस्ट अच्छा डॉक्टर, और उसकी बड़ी प्लानिंग थी अपने जीवन काल में, और उसके जो है माता पिता भी बहुत आशा करते थे कि अभी डेंटिस्ट बन गया, लेकिन अचानक ही शरीर छूट गया उसका। तो ऐसे ऐसी घटनाएं होती और हो रही और होती रहती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो है मतलब सोचता है कि अब तो मैं इतना पढ़ ले गया हूँ, अब तो ये हो गया, अब तो मैं मतलब सुरक्षित हूँ, अब मैं सुरक्षित, अब मैं जो है पैसा अब इकट्ठा करूंगा, मैं सुख प्राप्त करूंगा, अपने घर वालों को सुखी करूंगा। कोई भी शक्ति आए हमारे पास आपके पास, ये हमेशा तैयार रहो कि कभी भी जा सकती है, हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं और हमारा जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है, कभी भी हमारा जीवन जा सकता है हमारे हाथ से, हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। तैयार रहो, हमेशा छोड़ने के लिए तैयार रहो। तो ये जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, ये हमको वो दृष्टि देती हैं जिससे कि हम आगे चल करके इतना धक्का नहीं खाएं। तो बहुत दिमाग में बड़ा धक्का लगता है एकदम से, क्योंकि भौतिक जगत में यही आज की शिक्षा है, आज की शिक्षा यही है कि कुछ भी मिल जाए तो आप उसको समझो कि हाँ, अब आत्मविश्वास अपना विकसित करो, आत्मविश्वास विकसित करो कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, हम सफल सफल होंगे, हम सफलता प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, आप आगे बढ़ेंगे या खड़े भी रहेंगे या बैठेंगे या लेटेंगे और श्वास बंद हो जाएगी, कुछ पता नहीं है। नहीं नहीं, अज्ञान, आज की शिक्षा अज्ञान सिखाती है, किसी अज्ञान को जो है बढ़ाओ कि नहीं नहीं हम जिएंगे, हम सुखी होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम धन प्राप्त करेंगे, हम यही करेंगे, यही अज्ञान। तो ये अज्ञान जो है इन पुस्तकों के द्वारा ही दूर होगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव से शिक्षा ये मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। ये मतलब जो भी शक्ति आपको प्राप्त होती है उतना ही देख आपको झुकना चाहिए कि भगवान ने मुझे दी है, मैं तो योग्य नहीं हूँ। और ये शक्ति जो भगवान ने दी है, धन संपत्ति दी है, अब कहीं इसका उल्टा उपयोग ना हो जाए कि मैं भगवान की सेवा में ना लगा करके माया की सेवा में लगा दूं और अपना ही नुकसान कर लूं। कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, मुझे भगवान ने तो दी है संपत्ति, या भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, वो बुद्धि भी मुझे चाहिए और भगवान से बुद्धि मांगे। हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं यही इसीलिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आपकी सेवा में लगूं, अपनी हर चीज़ आपकी सेवा में लगाऊं। तो हमारी चिंता होना चाहिए कि जो कोई भगवान ने हमें दिया है वो भगवान की सेवा में लगाऊं, बल्कि मांगने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। जो कुछ आपके पास है वहाँ वही भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं आप, फिर और चीज़ और क्यों मांग रहे हैं? आपके पास जो कुछ भी है, आपकी शक्ति है, आपका शरीर है, वो माया की सेवा में लगा हुआ है और आप जो है भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपना समय भगवान की सेवा में पहले से नहीं लगा रहे, फिर क्यों मांगते हैं कि और मिले मुझे, ये भी मिले वो भी मिले? तो जो कुछ भी मिलेगा वो और माया की सेवा में लगेगा। तो हमारी प्रार्थना क्या होती है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा धन है, अपनी सेवा में लगाइए, तब फिर मैं कुछ और मांगूंगी और हो और हो, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतः ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्लोक पर विचार करें तो श्लोक के और भी अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो ये सीधा सीधा है, प्रभुपाद ने दिया, वंचित हो हम, वंचित हो गया हूँ मैं, किनसे? हरि, भगवान से मैं वंचित हो गया हूँ। तो वंचित का मतलब दूर हो गया हूँ, मैं भगवान से दूर हो गया हूँ। बंधु रूपिणा, जो मुझे अपना बंधु समझते थे, अपना घनिष्ठ मित्र समझते थे। अब यहाँ पर एक भाव दूसरा ये भी है, है? कि वे हरि हैं, वे भगवान हैं और मैं एक साधारण जीव हूँ। वे भगवान हैं और मैं एक साधारण जीव हूँ, मैं उनका बंधु कैसे हो सकता हूँ? लेकिन उन्होंने मुझे अपना बंधु माना,
और जितनी देर तक उन्होंने मुझे अपना बंधु माना ये उनकी विशेष कृपा रही, जो कि मैं योग्य नहीं था, उनका बंधु उनका मित्र बनने के योग्य नहीं था, उन्होंने मुझे मित्र का सम्मान दिया है? लेकिन अब मैं वंचित हो गया हूँ, मैं धोखा खा गया। वंचित का दूसरा अर्थ क्या होगा? धोखा खाना, कि मैं धोखा खा गया हूँ, मैं धोखा खा गया हूँ भगवान के द्वारा, कि भगवान ने मुझे अगर अपना घनिष्ठ मित्र माना तो मुझे नहीं सोचना चाहिए कि मैं उनका घनिष्ठ मित्र बन गया हूँ। मैंने जो है मतलब उनको अपना अपने समान मित्र मान लिया और मित्र की तरह व्यवहार किया और मैं जो है उनका उनकी सेवा नहीं कर पाया। अर्जुन का यहाँ पर ये भाव है कि वे तो जो है मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानते थे तो मैंने भी समझ लिया, जबकि मुझे नहीं समझना चाहिए, मुझे तो उनकी महिमा समझना चाहिए, उनकी उनकी कृपा समझना चाहिए है? तो मुझे नहीं समझना चाहिए, मुझे तो उनकी सेवा करना चाहिए। मैंने उनकी कुछ सेवा नहीं की बल्कि मैं उनका और अपमान करता था। सखेति मत्वा प्रसिभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आपको सखा मान करके मैंने बहुत अपराध किया। कैसे बोलता था मैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, कितना अपराध है मेरा, कहाँ मैं साधारण जीव और कहाँ असंग ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान, और उनको वे मुझे अगर घनिष्ठ मित्र मानते थे तो ये तो उनकी कृपा है, ये तो उनकी विनम्रता है, ये मुझे तो समझना चाहिए था। मैं भी जो है इतना मूर्ख हूँ कि मैं उनको जो है अपना अपने बराबर समझने लगा, है ना? तो वंचित तो हम का मतलब कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया है? या मैं धोखा खा गया कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मान लो कंपनी का जो है मालिक है, और एक जो है साधारण मजदूर से अगर के गले में अगर हाथ डाल दे और यार दोस्त की तरह बात करे तो उस मजदूर को क्या सोचना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो उनकी कृपा है वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ कि ये मेरे जैसे हैं। और कभी भी वो जो है अपने ऊंचे पद में पहुंच जाएंगे और मैं यहाँ पर रहूँगा फिर मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ, तो पहले से ही आशा ना करें। तो अर्जुन का यहाँ पर भाव ये भी है कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, और धोखा जो उन्होंने मुझे दिया है कि मैंने उनको समझ लिया कि वो मेरे मित्र हैं, है ना? तो ये मेरी मूर्खता है, ये मेरी मूर्खता है कि मैं इस प्रकार से धोखा खाया। जैसे हनुमान जी, तो श्री राम जो है हनुमान जी को भी अपना भाई जैसा सम्मान देते हैं, अपने सखा जैसा सम्मान देते हैं, लेकिन हनुमान जी जानते हैं नहीं मैं दास हूँ, तो हमेशा अपने सेवक की तरह रहते हैं, वो नहीं मतलब सोचते कि नहीं भगवान जो है मुझे अपना भाई की तरह समझ रहे हैं, अपना मित्र की तरह समझ रहे हैं, अपने बराबर सम्मान देते हैं तो मैं बराबर हो गया हूँ, हमेशा नीचे रहते हैं। सुग्रीव भी जो है उनको भी अपना सखा माना है और अग्नि को साक्षी करके मित्रता का संबंध जोड़ा, सुग्रीव ने नहीं समझा नहीं विश्वामी है मैं तो दास हूँ, लेकिन अर्जुन सोचते मैंने बड़ी मूर्खता की, नहीं एक ऐसा मूर्ख निकला कि उनको अपने जैसा मान लिया, मैं कितना मूर्ख हूं। तो अर्जुन ने जो है जब भगवान का विश्वरूप देखा तो अर्जुन ने अपनी ये गलती जो है मतलब बड़ी गहराई से समझी कि मैंने जो है बहुत बड़ी गलती की है। सखेती मत्वा प्रसिभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, आपको सखा मान करके मैंने बलपूर्वक ये शब्दों का प्रयोग किया है, बलपूर्वक, मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी अपनी मूर्खता से अपने अपनी शान से मैं आपको बोलता था हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा ना जान करके मया प्रमादात, प्रमाद के कारण, प्रमाद उसको बोलते हैं प्रमाद, लापरवाही, तो ये मेरी लापरवाही थी कि मैं आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखे ऐसे बोलता था। प्रणय न वापी, अथवा प्रेम पूर्वक भी हो सकता है कि मेरा प्रेम का कुछ लक्षण हो ये। तो अर्जुन ने कहा अभी लापरवाही के कारण किया मैंने या प्रेम के कारण किया, लेकिन हुआ तो अपराध है, हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है। यच्चा वहा सार्थम असत्य तोसी, और अभास अभास हंसी मजाक के लिए भी मैंने आपका बड़ा अपमान किया है असत कृतों से। विहार सैया आसन भोजन, आपके साथ विहार, आपके साथ सैया, आपके साथ आसन। सैया माने एक साथ लेटते सोते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो इसमें भी मेरा बड़ा अपराध हुआ है, आपके आपके सैया में मैं भी लेटा सोया, कितना अपराध किया मैंने। कहाँ मैं एक क्षुद्र जीव और कहाँ आप असंख्य ब्रह्मांडों के नायक। विहार सही आसन, आसन एक आसन पर बैठना, भोजन ये आपके साथ खाया मैंने, कितना अपराध किया। एको धवा पे चित्र तत्समक्षम, तो अकेले भी मैंने आपके साथ बहुत धृष्टता की, मित्र समझ करके, आपको मित्र समझ करके, अथवा एक हो तो आप चुत तत्समक्षम, अथवा सबके सामने भी तत्क्षमये त्वाम अहम अप्रमेयम, तो अब मैं सब अपराधों को आपसे क्षमा कराता हूँ। अप्रमेयम, आप अप्रमेय हैं, है ना। तो अर्जुन का भाव क्या है, अब ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन ने जो है कृष्ण को जो है ये संबोधन के प्रयोग नहीं किए, कृष्ण यादव सके कैसे, हे विश्वरूप, हे जगन्नाथ निवास, हे देवेश, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है, है? तो अब आगे से तो मैं आपको जो है मतलब इन शब्दों का प्रयोग करूंगा आपके लिए, क्या हे देवेश, हे जगन निवास, हे विश्वरूप, अब कृष्ण यादव सखा, है? ये सब जो है मैंने अब बंद कर दिए, अब नहीं बोलूंगा आपको, है ना। भगवान भगवान फिर क्या कहते हैं, माते व्यथा माँ चवे मूढ़ भागो, तुमको ऐसी व्यथा नहीं होना चाहिए इस प्रकार की, और ना इस प्रकार की मूर्खता होनी चाहिए। क्यों, कि मैं तुम्हारा मित्र पहले से ही हूँ, और मित्र होने के कारण ही तुमको विश्वरूप दिखा रहा हूँ, अब तुम जो है उल्टा सोचने लगे हो कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ इसलिए तो तुमको दिखा रहा हूँ अपना विश्वरूप, और तुम उल्टा सोचने लगे कि अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। माँ देव था माँ चवे मूढ़ भागो, और तुम्हें ऐसा ऐसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए कि अब तुम मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलोगे, क्योंकि ऐसे शब्दों से तो मैं प्रसन्न होता हूं। हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव, तुम बोलते तो मुझे आनंद आता है। तो भगवान कहते माते व्यथा माँ च विमूढ़ भावो दृष्टवा रूपम घोरम ईदृंगम वेदम, मेरा ऐसा घोर रूप देख करके विपेद भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य, तो विपेद भी बिना भय के, भय से मुक्त होकर के, विपेद भी प्रीत मना और प्रीति मन से तुम जो है प्रीत मना पुनस्तम फिर से तुम मेरा तदेव रूपम इदम प्रपश्य, वही रूप देखो मेरा, मेरे उसी रूप को देखो तुम। तो भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन से कि पहले मैं तुम्हारा मित्र हूं, बाद में फिर कुछ और हूं, ईश्वर हूं जो भी हूं बाद में हूं, लेकिन पहले तुम्हारा मित्र हूं। अर्जुन सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको मित्र समझ लिया, है ना। तो यहां पर फिर अर्जुन यही बात बोल रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, बंधु रूपिणा, कि उन्होंने मुझे अपना बंधु माना, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र माना, या मेरे मित्र रूप में वो व्यवहार करते थे, तो मैं बहुत बड़ा धोखा खा गया, मैं बहुत बड़ा धोखा खा गया कि वे मेरे मित्र हैं और कोई सेवा नहीं करी, उनकी कोई सेवा नहीं करी, उनके चरणों की कोई सेवा नहीं करी, तो बहुत बहुत बड़ा धोखा हो गया, मतलब मेरा वो अवसर जो है निकल गया, मुझे सेवा करने का मौका मिलना तो बहुत अच्छा अवसर मिला था सेवा करने का, वो सेवा करने का मौका चला गया। जैसे माधव इंद्रपुरी भी बहुत रोए कि गोपाल आए, मैं पहचान नहीं पाया, एक बालक के रूप में आए, मुझे दूध पिला के चले गए, और मैंने उनकी स्तुति प्रार्थना कुछ भी नहीं की, उनकी कुछ भी सेवा नहीं की, मैंने दूध पी लिया, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, बड़ा निर्लज्ज हूँ, भगवान जो है मुझे दूध पिला के चले गए, मैं दूध पी लिया, बेशरम हूँ। मुझे शर्म भी नहीं आई, मैंने दूध भी पी लिया, उनका उनका दिया हुआ दूध पी लिया, उनको सिर तक नहीं झुकाया मैंने। तो भक्तों को जो है इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है कि वे जो है भगवान की सेवा नहीं कर पाए, लेकिन भगवान प्रसन्न हैं उनकी सेवा से। भगवान उनकी सेवा को कम नहीं समझते हैं और भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के ही इस रूप में आते हैं, छिप करके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। भगवान सेवा करते हैं भक्तों की, और ये अपना ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं। तो ये जो है भगवान का गुण है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं बंधु के रूप में हरि के द्वारा धोखा खा गया, मैं धोखा खा गया, बहुत बड़ा धोखा खाया। जो दूसरे भक्त हैं वो खूब स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया और मैं उनके साथ बेशरम होकर के लेटता था, सोता था, उनके साथ बैठता था, हंसी मजाक करता था, ऐसी ऐसी बातें बोलता था जैसे मेरे जैसे हूँ। लेकिन अब जो है मैं बड़ा भारी जो है धोखे का शिकार हुआ हूँ और मुझे जो है सेवा करने का जो अवसर मिला था वो अवसर भी चला गया। तो ये जो है भाव अर्जुन का है। अब देवताओं को विस्मित करने वाला जो तेज था अर्जुन का, उसके लिए मैं कुछ आपको घटना सुनाऊंगा महाभारत से। ये उस समय की घटना है जिसमें विराट नगर में 5 पांडव छिप करके रहते थे, राजा विराट के महल में रहते थे 5 पांडव, और 1 साल का अज्ञातवास चल रहा था और दुर्योधन हमेशा इसी ताक में था कि किसी प्रकार से पांडवों का पता चल जाए तो 12 साल के लिए फिर से वनवास में इनको भेज दो। तो उस समय जो है फिर ये सोचा कि अगर गऊओं का अपहरण कर लें विराट नगर राजा विराट की, तो अगर पांडव छिपे हैं तो वो आएंगे युद्ध करने के लिए और हम उनको पहचान लेंगे और कहेंगे जाओ दोबारा जाओ 12 साल वनवास में। उनको पता नहीं था कि 12 साल पूरे, 1 साल पूरा हो गया अज्ञातवास का। तो वो जो है इस चक्कर में थे कि हम गवें अगर विराट की छीन लेंगे तो राजा विराट में तो वो शक्ति है नहीं युद्ध करने की, और 5 पांडव उनके महल में छिपे हुए हैं तो वही आएंगे युद्ध करने के लिए। तो जब अर्जुन ने जो है युद्ध करना शुरू किया तो उस समय जो है देवता लोग जो है उस युद्ध को देखने के लिए आए, अर्जुन का युद्ध देखने। इसी समय देवताओं से इंद्र विमान पर बैठकर वहां पर आए, उनके साथ विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगणों के साथ इंद्र थे। और उस समय देवता, यक्ष, गंधर्व और बड़े बड़े नागों से भरा हुआ वहां का आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रह मंडल की भांति शोभा पाने लगा। कृपाचार्य और अर्जुन के युद्ध में, अभी अर्जुन कृपाचार्य के साथ युद्ध कर रहे हैं, देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति का मनुष्यों पर प्रयोग करने वाले सूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने विमानों पर बैठकर आए। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। इच्छानुसार चलने वाला दिव्यान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान में 1 करोड़ खंभे थे। 1 करोड़ खंभे, एक उनमें एक ओर सोने के और दूसरे मणि और रत्नों के खंभे लगे हुए थे। सोने के खंभे, मणियों के खंभे, रत्नों के खंभे थे। उस विमान में इंद्र से 33 देवता विराजमान थे। इनके सिवा गंधर्व, राक्षस, सर्प, पितर, महर्षिगण, राजा वसुमना, बलाक्ष, सुप्रतर्दन, अष्टक, शिबि, ययाति, नहुष, गय, मनु, पुरु, रघु, भानु, कृशास्व, सगर और नल, ये सब राजा जो है देवराज के विमान में बैठे हुए थे, जो प्राचीन काल के राजा थे। सोचिए, राजा सगर थे, राजा नल थे, ये सब लोग बैठे थे। ये सभी देवता सिद्ध और महर्षि अर्जुन और कौरवों का युद्ध देखने के लिए जुटे। तो मैं बीच से सुना रहा हूँ अर्जुन का पराक्रम कैसा है। तब सामर्थ्यशाली अर्जुन ने क्रोध में भरकर बाण चलाने की विचित्र पद्धतियों का प्रदर्शन करते हुए बाणों की झड़ी लगाकर संपूर्ण दिशा विदिशाओं को ढक दिया और आकाश को सब ओर से एकमात्र अंधकार में निमग्न कर दिया, बाणों से अंधकार। तब अर्जुन ने सैकड़ों बाण मारकर कृपाचार्य को ढक दिया। अर्जुन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए झुकी हुई गांठ और सुनहरे फल वाले चार बाणों द्वारा बड़ी उतावली से कृपाचार्य के चारों घोड़ों को बीन डाला। वे चारों बाण बड़े तीखे उत्तम थे, विष अग्नि से जलते हुए सर्पों की भांति उन तेज बाणों की मार खाकर वे सभी घोड़े सहसा उछल पड़े। इससे कृपाचार्य अपने स्थान से गिर गए। अर्जुन ने रथ से गिरा दिया कृपाचार्य को। कृपाचार्य को स्थान से गिरा हुआ देख शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने उनके गौरव की रक्षा करते हुए उन पर बाणों से आघात नहीं किया। बहुत सम्मान करते ना कृपाचार्य का, तो अर्जुन ने जो है फिर बाण नहीं मारा, गिरा दिया अर्जुन ने, लेकिन शत्रुभाव नहीं था ना उनको। फिर कृपाचार्य किसी प्रकार से रथ में बैठे, तब अर्जुन ने एक तीखे भल्ले नामक बाण द्वारा कृपाचार्य का धनुष काट डाला। कृपाचार्य को अभी भी एक बाण नहीं मारा, घायल नहीं किया, बहुत मतलब उनका जो है सम्मान करते हैं, लेकिन धनुष काट दिया। फिर उनके दस्तानों को नष्ट कर दिया, हाथ के दस्तानों को नष्ट कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने मर्मभेदी तीखे बाणों द्वारा उनके कवच को भी छिन्न भिन्न कर दिया, किंतु उनके शरीर को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचा। कवच को जब छिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन उनको जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाया कृपाचार्य को। कितनी कला है, कवच पूरा अगर तोड़ दें बाणों से और चोट ना लगे जरा भी खड़ोश ना आए, कितना आश्चर्य। अर्जुन ने जो है विधमन ना पार्थों से शरीरम अब पीड़ियत, जरा भी पीड़ा नहीं पहुंचाई। कुंती नंदन ने झुकी गांठ वाले एक बाण से उनके धनुष को भी काट दिया, क्योंकि उन्होंने फिर से धनुष उठाया तो अर्जुन ने फिर धनुष काट दिया। इसी प्रकार कृपाचार्य के बहुत से दूसरे धनुष भी अर्जुन ने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए छिन्न भिन्न कर डाले। कृपाचार्य जो भी धनुष हाथ में लेते हैं वो धनुष ही काटते हैं, लेकिन कृपाचार्य को कोई बाण नहीं मारा, नहीं धनुष काटते जाते हैं, बहुत से धनुष काट दिए। तब अर्जुन ने भारी उल्का की भांति अपनी ओर आती हुई शक्ति को 10 बाण मारकर आकाश में काट दिया। कृपाचार्य ने शक्ति मारी तो अर्जुन ने शक्ति को काट दिया। अर्जुन द्वारा 10 टुकड़ों में कटी हुई वो शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। महातेजस्वी अर्जुन ने उस संग्राम भूमि में कुपित हो पत्थर पर रगड़ कर तेज किए हुए अग्नि के समान तेजस्वी 13 बाण चलाए। अब 13 बाण मारे अर्जुन ने, कैसे? एक बाण से उनके रथ का जुआ काटकर, एक बाण से रथ का जुआ काटा, चार बाणों से चारों घोड़े मार दिए, कितने हो गए? 5। छठे बाण से रथ के सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया, 6 हो गए। फिर 3 बाणों से रथ के तीनों बेणू काट दिए, कितने हो गए? 9 हो गए। 2 से रथ का धुरा काट दिया, कितने हो गए? 11। और 12वें बाण से उनके रथ की ध्वजा को काट दिया, 12 हो गए। इसके बाद हंसते हुए वज्र के समान 13वें बाण द्वारा कृपाचार्य की छाती में चोट पहुंचाई, पहली बार चोट पहुंचाई एक बाण से, है ना? क्योंकि कृपाचार्य ने तो बहुत अर्जुन को जो है प्रयास किया था मारने का, लेकिन एक बाण से थोड़ा सा मतलब कुछ किया कृपाचार्य को, चोट पहुंचाई। इस प्रकार धनुष रथ घोड़े सारथी के नष्ट जाने पर कृपाचार्य हाथ में गदा लिए रथ से कूदे और तुरंत उसे अर्जुन पर मारा, गदा फेंक के मारी। गदा को अस्त्र और शस्त्र दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है, अस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं मतलब फेंक के मारते हैं, और शस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं पकड़ करके भी प्रहार करते हैं। तो उन्होंने अस्त्र की तरह फेंक के मारा कृपाचार्य ने अर्जुन को गदा। कृपाचार्य द्वारा चलाई हुई वो भारी गदा अर्जुन के बाणों से प्रेरित होकर उल्टी लौट गई। कृपाचार्य अर्जुन को मारना था तो उल्टी लौट गई, बाणों के द्वारा उल्टी लौट गई, किसको लगी? कृपाचार्य को ही लगी उल्टी लौट गई। कृपाचार्य कि प्राण बचाने की इच्छा से कौरव सैनिक सब ओर से आकर अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे और सैनिक अर्जुन से डर करके रथहीन कृपाचार्य को बड़े वेग से हटा करके ले गए, अर्जुन से दूर ले गए कि अब बहुत खतरा है कृपाचार्य को। तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन का जो है कैसा पराक्रम, और अर्जुन जो है बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो पराक्रम अब मेरा कहाँ चला गया। भगवान कृष्ण की ही पत्नियां का जो है अपहरण अर्जुन के सामने हुआ, तो अर्जुन को इससे बढ़कर के और क्या दुख हो सकता है, अर्जुन के लिए इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है कि भगवान तो चले ही गए और उनकी जो पत्नियां हैं उनका भी अपहरण। अर्जुन को पता नहीं था कि वास्तव में भगवान ही अपनी पत्नियों का अपहरण कर रहे हैं। वे जो कुरूप जो थे, मतलब जंगली लोग थे, कुरूप थे, जो भगवान की पत्नियों का अपहरण कर रहे थे, वास्तव में भगवान ही थे, क्योंकि जो है ये देवांगनाएं, स्वर्ग की देवांगनाएं थी कुछ, भगवान की 16108 पत्नियों में से कुछ स्वर्ग की देवांगनाएं थी, जो अष्टावक्र के कुरूप शरीर को देख करके 8 स्थानों से टेढ़े हैं, तो जब चलते तो वो शरीर बहुत मतलब उनका हिलता है ना, 8 स्थानों से टेढ़ा शरीर, तो उनको देख करके हंसी, तो अष्टावक्र ने साफ दिया कि तुम्हें जो है कुरूप जो जंगली लोग हैं तुम्हारा अपहरण करेंगे। जब उन्होंने प्रसन्न किया अष्टावक्र मुनि को, तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि मेरा साप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें वर देता हूँ कि भगवान की तो पत्नियां बनूंगी। अब भगवान की पत्नियां बने तो भगवान की सेवा कौन अपहरण करेगा उनको, तो उन पत्नियों को जो है भगवान अपनी ही पत्नियों को अपहरण कर रहे हैं कुरूप जंगली व्यक्तियों के रूप में। लेकिन साप चूंकि अष्टावक्र का साप था, तो साप को भोगने के लिए वो पत्नियां भी नहीं समझ पाए कि हमारे पति ही हैं, ये भगवान ही हैं, और अर्जुन भी नहीं समझ पाए। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है, देवताओं को जो विस्मित करने वाला मेरा तेज था, सब देवता भी अगर आ जाए मेरे सामने तो हरा नहीं सकते अर्जुन को, ऐसा अर्जुन का जो पराक्रम है वो कहाँ चला गया, और भगवान की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए, तो उनको कितना दुख हो रहा है, अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये सब जो है भगवान की लीला है, भगवान के रहस्य हैं। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है। भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण किया, तो वो जो पत्नियां थीं वो आगे आगे चल रही थीं, उनकी इच्छा के अनुसार जो कुरूप जंगली थे उनकी इच्छा के अनुसार आगे आगे चल रही थीं, इस प्रकार से चल रही थीं कि वे उनका स्पर्श ना करें, और इस तरह से वे जो है जमीन में समा गई। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रक्षा की, वो नहीं समझे, और भगवान भी जो है केवल दिखा रहे थे कि वे अपहरण कर रहे हैं, वे थोड़ी अपहरण कर रहे थे, भगवान थोड़ी छू रहे थे उनको, स्पर्श नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है भगवान के धाम तो गई, सब भगवान के धाम चले गए, लेकिन ऐसी लीला भगवान ने की, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान जब स्वयं अवसर देते हैं और अपने को छिपाते हैं, अपने महिमा को छिपाते हैं, और आपके साथ पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, या पति की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी भक्ति का फल प्रदान करते हैं, और वो रस उनको जो है प्रदान करते हैं, और इतने निकट भगवान होते हैं उनके, तो ये जो है भगवान की ओर से ये कृपा होती है, और फिर जिनका स्वरूप है तो भगवान की लीला में हमेशा उस रूप में रहते भी हैं। भगवान मनुष्य के भाव में गोलोक धाम में लीलाएं करते ही, गोलोक धाम में भगवान की लीलाएं होती हैं, तो वो मनुष्य के भाव में ही वो हमेशा के लिए पुत्र ही है नंद महाराज के, वहाँ पर वो लीलाएं उसी प्रकार की चल रही हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। कोई बड़े भक्त हैं अगर हमारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमें जो है समझना चाहिए कि उनकी महिमा नहीं घटी है, है ना। तो जो बड़े सीनियर हैं वो जो है कभी अगर हमारा सम्मान करते हैं और जो है बराबर का व्यवहार भी करते हैं, तो हमें जो है सावधान रहना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन भगवान अगर करते हैं तो भगवान तो फिर वो पूरे उसी तरह से बन ही जाते हैं, है? भगवान बच्चे बन जाते हैं तो आप के आश्रित हो गए, अभी आश्रित हो गए तो फिर आपको उनकी रक्षा के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। अब ऐसे कहें भाई ये तो बड़ा अपराध है, मैं उनकी रक्षा की चिंता कर रहा हूँ, वे तो रक्षा कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड की, मैं उनकी उनकी चिंता कर रहा हूँ रक्षा करने की, लेकिन वे स्वयं ही जो है ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वे इतने आश्रित हैं कि वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और आपको उनकी चिंता को होती रक्षा करने की। माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र समझ करके चिंता करें कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी, तो इसमें कोई अपराध थोड़ी है कि आप कहें नहीं ये कितना अपराध है, वे तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, तुम क्यों चिंता करती हो उनकी उनकी रक्षा की। लेकिन नहीं, भगवान जो इसी रस का आस्वादन करते हैं, एक रसास्वादन है। भक्तों को जो चिंता होती है भगवान की रक्षा की, इसमें भी एक रस है। हाँ जी, गणेश संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जब द्वारका में मतलब जाते हैं तो उसमें अपना चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं, और उनके आयुध हैं वो भी जो है अपने रूप में मूर्तमान जो है रूप में प्रकट होते हैं, और तेज से सब दिशाओं का अंधकार दूर करते हैं, और देवताओं के विमान एकदम खचाखच भरे हैं देखने के लिए कि भगवान अपने धाम में कैसे जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे अंतर्धान हो गए कि देवताओं को पता ही नहीं चला कि किस रास्ते से गए, लेकिन भगवान ब्रज में प्रकट हुए और वहाँ जो है सब ब्रजवासियों को उन्होंने एक विमान में बिठाया, विमान भी आया गोलोक धाम से, उसमें बिठाया और उसी रूप में बिठाया जिस रूप में वो थे, सब ब्रजवासी गौ में राधा रानी गोपियाँ सबको बिठाया और ले गए अपने धाम में। तो जब बजनाप जब राजा बने ब्रजमंडल के, तो 84 कोस का ब्रजमंडल तो कोई नहीं दिखाई दे रहे, तब भजन आपको बड़ी चिंता हुई कि मैं राजा तो यहाँ बना हूँ लेकिन कोई प्रजा ही नहीं दिखाई दे रही, नंद महाराज हैं यशोदा हैं गौ हैं गोपियाँ कोई नहीं दिखाई दे रहे, क्या हो गया, किसी ने शरीर भी तो नहीं छोड़ा, तो सशरीर चले गए, शरीर के साथ चले गए भगवान की धाम में। हाँ जी असुरों को भी शक्ति देते हैं, और उनको भी जो है अपने पुण्यों के अनुसार शक्तियां प्राप्त होती हैं, वे जो है पुण्यों में विश्वास करते हैं, वे नहीं जानते हैं कि पुण्यों का फल भी भगवान देने वाले हैं, मतलब हम अपने पुण्य से अपनी शक्तियां प्राप्त करेंगे, भगवान से स्वतंत्र होकर के पुण्य कर्म करते हैं उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन अज्ञान है बहुत बड़ा कि भगवान के विरुद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और नष्ट होते हैं। जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि भगवान ही जो है शक्ति देने वाले हैं, किसी की तपस्या के द्वारा भी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या के भोक्ता भगवान हैं और वही जो है फल प्रदान करेंगे। लेकिन असुर लोग सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी तपस्या अपनी समाधि से खुद शक्तियां प्राप्त करेंगे, भगवान से कुछ लेना देना नहीं। एक कर्म मीमांसा का सिद्धांत भी है, कि भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई भगवान है भी, अगर है तो, वैसे तो भगवान नहीं है, अगर भगवान है भी तो हम जो कर्म करेंगे उसका फल देने के लिए वो विवश हैं मजबूर हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं मानने की भगवान को, हम अपना कर्म कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलेगा ही, देंगे ही, देना पड़ेगा उनको। तो भगवान को मानने की जरूरत नहीं, कर्म मीमांसा है ना। तो ये असुरों के सिद्धांत होते हैं, और ऐसे कर्म करके भी जो है इंद्रियों को वश में करके, तपस्या करके कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अज्ञान है ना। ठीक है, हाँ जी।
जैसे एक भजन है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसमें मतलब बताते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा पतित हो, तो ये चीज हम प्रैक्टिकली कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि हम पतित हैं?
हम पतित हैं, हम कैसे प्रैक्टिकली रियलाइज करें? अगर आप रियलाइज करें और गहराई से देखें तो आपके अंदर इतने दोष हैं कि उन दोषों को आप दूसरों में नहीं देख सकते। आपको खुद ही पता है कि आपके अंदर क्या दोष हैं जो कि आपने खुद छिपाए हुए हैं। आप खुद अपने दोषों को छिपाते हैं, और वो दोष और किसी के अंदर नहीं, आपके अंदर ही हैं। तो अगर आप देखें तो आपको दिखाई देंगे बहुत से दोष, वो आपके ही अंदर हैं और किसी के अंदर नहीं है। आप जैसा पतित कोई नहीं है, अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। और भगवान कृपा कर रहे हैं कि वो भी नहीं दिखा रहे हैं सबको, आपको जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, उनकी कृपा है। आप इतने दोषित हैं, इतने दोषी हैं जितना कोई नहीं है, आप जैसा पतित कोई नहीं है, भगवान की कृपा है। और अगर आप स्वीकार करें तो भगवान प्रसन्न होंगे कि हाँ वास्तविकता यही है, ये समझने वाली बात है। सब कुछ करते हैं, आप दिखावे के लिए करते हैं, दिखा रहे हैं कि मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कितना अच्छा तिलक लगाए हूँ, कितना बढ़िया हूँ, अंदर से सब दोषी दोस्तों भरा हूँ देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वास्तविकता है, मैं भी ऐसे ही हूँ दिखावा करता हूँ भक्ति का, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ आ जाती है भक्ति तो उनकी कृपा से आ जाती है। मेरे मेरा कोई गुण नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊँ, उनकी कृपा से हो रहा है। और जब नहीं रहेगी कृपा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, एक दिन भी मंगल आरती में नहीं उठ पाऊँगा मैं उनकी कृपा से। और सोचता हूँ कि हाँ मैं अपने बल से उठ रहा हूँ मंगल आरती में, कितना बड़ा भक्त हूँ मैं, दिखाता हूँ सबको मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कुछ नहीं है, सब दिखावा है। भगवान की शक्ति से हो रहा है, अपना नाम हो रहा है, अपना नाम हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो वास्तविकता तो यही है, हमें जो है मतलब वास्तविकता को देखना चाहिए कि वास्तविकता यही है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। भगवान उठाते हैं तो मैं मंगल आरती में उठ पाता हूँ, कहाँ उठ सकता हूँ? और किसी दिन अगर नहीं उठ पाया तो गई मंगल आरती, गई क्या कर पाए, कुछ नहीं कर सकते हम। जब सो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, कौन उठा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश गौरनताई जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय हो। हरि बोल। श्यामलाल से
श्यामलाल प्रभु
जी,
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कथा की। और विशेष रूप से आखिर में प्रभु जी ने